نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب. آج ہم انشاء اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 81 سے 91 تک کر کے انشاء اللہ تعالی اس پارے کو مکمل کریں گے خوبصورت دنوں میں. ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ وقت نجران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، پھر آپ نے ان کو مباہلے کی بھی دعوت دی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اس دوران، اور انہوں نے بھی کئی باتیں کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ اب چاہتے ہیں کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے اور آپ کو اس طرح سے عبادت آپ کی کرنے لگیں جیسے وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور تھوڑا ان کی جو خرابیاں تھیں ان کو بھی مینشن کیا گیا کہ ان کی کیا چالیں ہیں جو وہ چلتے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، اور ان کے حسد کو بھی بیان کیا گیا. اسی طرح ان میں بعض لوگ جو کیسے ان کے اندر بے ایمانی ہے اس کو بھی مینشن کیا گیا، اور وہ کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ امی لوگوں کے لیے تو ہمارے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی بھی یعنی بے ایمانی کا معاملہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی حلال حرام کے قاعدے نہیں ہیں. یہ حلال حرام کے قاعدے تو صرف ہمارے اپنے یہودیوں کے لیے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کوئی بے ایمانی کر سکتے. اور ہم نے بہت اہم چیز دیکھی کہ عہد کو توڑنا، قسموں کو توڑنا تھوڑی قیمت پر، خاص طور پہ یہ عہد کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ان کے ہاں تھا اس کو توڑنا، تو اس کے لیے جو سزائیں بتائی گئیں، اور میں نے آپ کو احادیث بھی اس میں بتائی تھیں کہ ان میں بھی ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، اللہ اسے کلام نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کو پاک نہیں کرے گا. آپ نے امید ہے کہ ان احادیث کے آئینے میں اپنا آپ کو بھی چیک کیا ہوا کہ ہم بھی ان میں سے کسی پہ بھی پورے تو نہیں اترتے کہیں. پھر ہم نے ربانی ہونے کے بارے میں دیکھا کہ ربانی کون ہوتا ہے. ربانی وہ جو رب والا، اور رب والا کون ہے، اور انبیاء نے کیسے رب والا بنانے کے لیے لوگوں کو کوشش کی جو صرف ایک اللہ کا ہو، اس کے پاس اور کوئی موٹیوس نہ ہو، اپنے آپ کی طرف نہ بلاتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو لوگوں کو. اور یہی کردار ایک قرآن پاک کے تعلیم لینے والے کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ربانی بنے اور لوگوں کو بھی رب کی طرف صرف دعوت دے. آج ہم اہم موضوعات پڑھیں گے جن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اسلام کی بیسس پہ ہی نجات ہوگی آخرت میں، یا کوئی اور دین بھی لے آئیں تو اس پہ بھی نجات ہو سکتی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے؟ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لوگ تو اچھے ہیں، بڑے اچھے اپنے دین پہ چل رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ لوگ مسلمان اتنے ریجڈ بھی کیوں ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ کیا بات ہوئی نا. تو اور کیا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں ان باتوں کے جوابات. اور اسی طرح ایسا انسان جو کفر کے اوپر فوت ہو جاتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور ایسا انسان جو ایک دفعہ مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جاتا ہے اس کا ساتھ کیا معاملہ ہے، اور ایسا انسان کہ جو مثلا پہلے نہیں مانتا تھا اس کے بعد اگر وہ ماننا ہے और उसके बाद फिर जाता भी है लेकिन फिर वापस आना चाहता है, तो उसके साथ क्या होगा? तो तीनों तरह के लोगों की बात हम देख सकते हैं। आयत नंबर 81 से शुरू करते हैं हम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين اور جب لیا ميثاق کس نے لیا ميثاق ميثاق کہتے ہیں معاہدے کو agreement یا پکا عہد یا oath یا اس طرح کی چیز عام کوئی وعدہ اس کو نہیں ميثاق کہتے یعنی ایک بہت contract جس کو کہتے ہیں ہم تو وہ تو ایک پختہ بات ہوتی ہے نا تو جب میثاق لیا کس نے اللہ تعالیٰ نے اور میثاق میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک طرف لینے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جو میثاق پہ ایگری کرتا ہے تو کس سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا نبیین نبیوں سے کتنے نبیوں سے تمام انبیاء سے اس میں سارے انبیاء آ گئے کیا لیا عہد لما آتیتکم البتہ جو میں تمہیں دوں من کتابن کتاب میں سے وحکمتن اور حکمت میں سے تمہارے پاس کتاب آئے حکمت کی تعلیم آئے وزڈم آئے اگر کسی سارے نبیوں کے پاس تو ظاہر ہے کتاب نہیں آئی لیکن کسی نبی کے پاس اگر نہیں بھی آئی تو وہ پچھلے نبی کی کتاب کو فالو کر رہا ہوتا تھا تو یعنی کتاب کوئی فالوور تو سارے ہی تھے ثم جاءکم یہ میثاق کی اگریمنٹ کی کلوز بتائی جا رہی ہے کہ کیا اگریمنٹ لیا ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس کون رسول ایک رسول تمہاری زندگی میں آ جائے مصدق لیما تصدیق کرنے والا وہ جو آنے والا ہے وہ تصدیق کرے لیما لیے اس کے جو معاکم تمہارے پاس ہے یعنی جو کتاب جو حکمت تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو اب تمہارا کیا کام ہے یہ ہے میثاق یعنی تم سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پکا وعدہ لیا کیا وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس میری کتاب آ جائے حکمت آ جائے پھر تمہارے زمانے میں ایک اور رسول آئے جو تصدیق کرتا ہے ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ سچا رسول ہے اور اس کے پاس جو پہلا رسول آلریڈی موجود ہے دوسرا آنے والا کہے کہ یہ پہلا والا سچا ہے اور اس کے پاس جو کتاب ہے وہ سچی ہے تو تمہارا کیا کام ہے پہلے والے کا کیا کام ہے جو پہلے سے موجود تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے وَلَا تَنصُرُنَّهُ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی مدد کرو اس نے بھی آ کے اس کے اوپر اس کی تصدیق کی پہلے والے کی اور پہلے والے کو بھی کہا گیا کہ اب جب دوسرا آ جائے تو تم نے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے تم نے اور صرف ایسے ہی نہیں ضرور با ضرور تم یہ کرو گے قالا اس نے کہا کس نے اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ ان سے میثاق لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اقرار تم کیا تم اس کو مانتے ہو اقرار کرتے ہو تم اس اس کو کیا کہیں گے یعنی تم اس کے اوپر یعنی تم اس کو ویریفائی کرتے ہو تم اس کو مانتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي اور لیتے ہو تم اس پر ذمہ داری یہ میرا عہد لیتے ہو اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو میں نے آپ کو بتانا اسر کیا ہوتا ہے ذمہ داری کو بھی کہتے ہیں بوجھ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ذمہ داریاں ظاہر ہے ایک انسان کے اوپر بوجھ ہی ہوتی اسری میرا عہد یعنی میں تم سے یہ عہد لے رہا ہوں تم بتاؤ کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو تم مان لیتے ہو اس کو ہی تم ذمہ داری لیتے ہو یہ قالو ان سب نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا قالا فرمایا فشہدو پس گوارو وانا معاکم اور میں بھی معا ساتھ کم تمہارے مین الشاہدین گواہوں میں سے ہوں میں خود بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی اس عہد کی کہ تم ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے یہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا اب یہ کیا کب کا عہد ہے کیا یہ کیا ہوا یہ کیا ماجرا بات یہ ہے کہ ایک اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ عالم ارواح میں جو کہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا कि देखो तुम जब साहिबे किताब होगे, तुम्हें हिकमत दी जाएगी, फिर तुम्हारे ही वक्त में और कोई रसूल आएगा, तो तुम्हारा ये काम होगा कि तुमने उसके ऊपर भी ईमान लेकर आना है और उसकी मदद करनी है। और ये अहद इसी तरह लिया गया जैसे तमाम इंसानों से भी तो एक अहद लिया गया ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अहदे अलस्त, अलिफ लाम सीन ता। ठीक है, वो अहदे अलस्त क्या था कि सारी रूहें जब हम आलमे अरवाह में थे तो अल्लाह ताला ने हम सब से एक अहद लिया था, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हम सब ने कहा था जी अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और अब हम फिर कैसे भूल गए इसको? असल में इसमें भी इम्तिहान है हमारा, अगर उसी को याद रखा जाता फिर तो कोई इम्तिहान ही ना होता, मगर उसी के ये इफेक्ट्स हैं, उसी की ये चीज है कि हमारे अंदर वदियत कर दी अल्लाह ताला ने, बिल्ट इन है, प्रोग्रामड है हम ऐसे कि हम एक रब के आगे झुके हैं, हमारे अंदर ये चीज है, हम अंदर से ये तलब है हमारे कि हम वो किसी को रब समझें और उसके आगे झुक जाएं। अब वो अलग बात है कि दुनिया में आके बहुत सारे लोगों ने किसी और को रब बना लिया अल्लाह ताला को छोड़ के और गुमराह हो गए। वो क्यों किसी और को रब बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी ये तलब मौजूद है, उनके अंदर भी ये ख्वाहिश है कि कोई हमारा हो बड़ा जिसके आगे हम झुके, जिसके आगे हम माथा टेके, जिससे हम अपनी हाजतें मांगे। तो इसी किस्म का एक अहद ओनली स्पेसिफिकली अंबिया से भी लिया गया था, जैसे सब इंसानों से लिया गया इसी तरह उनको अलग करके उनसे भी अहद लिया गया और उन्होंने भी इकरार किया और उनके अंदर भी ये वदियत कर दी गई, वो प्रोग्राम्ड थे इस तरह कि उनको अगले नबी के की तस्दीक करनी है और उनकी मदद करनी है। और दूसरा इसके बारे में ये मौकफ है कि हर नबी को अल्लाह ताला ने वही फरमाई और उनको ये फरमाया कि उन्होंने आने वाले नबी की पर ईमान रखना है, जो नबी नया आएगा उसके ऊपर ईमान रखेंगे और उसकी मदद करेंगे। और इससे आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जमीन पर एक ही नबी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेशुमार ऐसे मौके थे जिसमें जमीन पर एक से ज्यादा अंबिया मौजूद होते थे। मिसालें आप खुद देख सकते हैं, देखें आप मूसा अलैह सलाम और हारून अलैह सलाम दोनों नबी हैं, आप देखें इब्राहिम अलैह सलाम हैं, उनके वक्त में ही उनके भतीजे, अपने भतीजे लूत अलैह सलाम हैं, उनके बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, उन जिंदा थे तो वो इस्माइल और इसहाक अलैह सलाम उनने नबुवत पाई थी। तो उन्होंने अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसे देखे कि और भी अंबिया उन्हीं की सामने मौजूद हैं, तो किसी ने भी दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं किया। तो यहां पर एक माना, ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं, तुम जाअकुम रसूलुन, यहाँ पे रसूलुन का एक माना ये किया गया, इन चीजों को नोट कर लें। एक मैंने आपको क्या बताई कि ये मीसाक कब लिया गया, दूसरी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जाअकुम रसूलुन में रसूलुन से मुराद क्या है। रसूलुन से उन्होंने कहा, उलमा ने, कि नकिरा है ना ये कि कोई भी रसूल आए, कोई भी रसूल आए तो तुमने उसकी जो तस्दीक करता हो, जो तुम्हारे पास है, तो तुमने उसके ऊपर ईमान लाना और उसकी मदद करनी है। तो यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ ये, मूसा अलैहि सलाम के वक्त के अंदर भी है, फिर यहया अलैहि सलाम है और ईसा अलैहि सलाम है, तो एक ही वक्त में आए ना, यहया अलैहि सलाम उनकी तस्दीक कर रहे हैं ईसा अलैहि सलाम की। और दूसरा माना उलमा ने ये बयान फरमाया कि रसूल उनसे मुराद नबी अलैहिस्सलाम है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया कि उसकी जिंदगी में अगर अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को भेजे तो उस पहले वाले जो नबी हैं उन पर फर्ज है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आपकी मदद करें और अपनी उम्मत को भी यही तलकीन करें कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आपकी ताबेदारी में लग जाएं। इसी तरह मुसनद अहमद की एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने एक दोस्त से जो कुरैजी यहूदी है तो उससे कहा था कि वो तौरात की कुछ मेन मेन बातें मुझे लिख दे, तो अगर आप कहें तो मैं आपको पेश करूं वो बातें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। हज़रत अब्दुल्ला साबित ने फरमाया कि हज़रत उमर से कि क्या तुम नहीं देखते कि आपके चेहरे का क्या हाल हो रहा है, तो वो अपनी उसके अंदर बोल रहे थे एक जोश में। तो हज़रत उमर कहने लगे, फौरन डर गए, कहने लगे मैं अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे राज़ी हूँ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा दूर हुआ और फरमाया, कसम है अल्लाह की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा अलैहि सलाम भी इस वक्त तुम में आ जाए और तुम उनकी ताबेदारी में लग जाओ मुझे छोड़ के, तो तुम सब गुमराह हो जाओगे। यानी अगर मूसा और ईसा अलैहि सलाम भी जिंदा होते तो वो भी मेरी इत्तेबा के अलावा कोई और रास्ता ना पाते, ये भी हादीस में मौजूद है। तो वो तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई भी नबी नहीं आए, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के भी दौर में आते तो हर नबी से अल्लाह ताला ने ये अहद लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे और आपकी मदद में लग जाएंगे। ठीक है, ये एक बात हमें पता चलती है। और ये देखिए, ये बात फरमा कर उनकी उम्मतों को बता दिया गया, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम की हैं, चाहे वो मूसा अलैहि सलाम की, यहूदो नसारा, उनको समझा दिया गया, तुम्हारे तो पैगंबरों से भी ये अहद लिया गया था, तुम कैसे इनकार करते हो इस नबी का, तुम्हारे तो पैगंबरों से भी ये कहा गया था कि वो इनके ऊपर ईमान लेकर आए, और तुम्हारे पैगंबर भी तुम्हें जाते जाते ये कहकर गए कि इस नबी के ऊपर ऐसा, ये नबी हमारी जिंदगियों में आया तो हम ईमान लेकर आएंगे, हमारे बाद आए तो तुमने उनकी ऊपर ईमान भी रखना है और उनकी मदद भी करनी है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, ये भी हमें पता चलता है। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, इमाम है तमाम अंबिया के, खातम है यानी नबुवत का सिलसिला खत्म हो जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके। और मेराज वाली रात आप देखते हैं कि बैतुल मकदस में तमाम अंबिया की इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई, हालांकि आप सबसे आखिर में आए हैं। इसी तरह हशर के मैदान में भी अल्लाह ताला तशरीफ नहीं लाएंगे फैसलों के करने के लिए, तो कौन होगा जो इसके लिए शिफात करेगा? मकाम महमूद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फायज होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला नजूल फरमाएंगे और फैसले किए जाएंगे, जबकि बाकी सारे अंबिया इनकार कर देंगे जब लोग उनको जाके कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसले शुरू करे, हम तो थक गए यहाँ। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकाम पता चलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबुवत ही इस वक्त भी जारी हो सारी है, क्योंकि अब कोई और नबी नहीं आना, कयामत तक कोई और नबी नहीं आना, तो आपकी ही नबुवत की कंटिन्यूएशन है। पहले क्या होता था, एक नबी आता था फिर दूसरा आ जाता था, तो अब उसका दौर शुरू हो गया। फिर जैसे मूसा अलैहि सलाम थे पहले और उसके बाद ईसा अलैहि सलाम आए, तो उन्होंने बेशक मूसा अलैहि सलाम पर की तस्दीक की, लेकिन अब मूसा अलैहि सलाम की शरीयत के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ और मेरी मदद करो आगे। मूसा अलैहि सलाम की इताअत अब नहीं, अब मेरी इताअत करनी है तुमने। मूसा अलैहि सलाम दुनिया से जा चुके, ठीक है, अब अगले नबी की मदद जरूरी हो जाती और उस पर ईमान लाना जरूरी हो जाता। और ईसा अलैहि सलाम भी दुनिया से जाते हुए ये कहकर गए हैं, सूरह सफ में आप चेक कर लें आयत नंबर 6 के अल्लाह ताला ने फरमाया, याद करो ईसा बिन मरियम की वो बात कि जो उसने बनी इसराइल से फरमाया था, उन्होंने कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से भेजा जाने वाला, तस्दीक करने वाला हूं तौरात की, जो मुझसे पहले मौजूद है, और मैं बशारत देने वाला हूं अपने बाद आने वाले रसूल की, जिसका नाम अहमद होगा। यानी इससे ज्यादा और क्या मुझे बताएं बात रह जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम ये खुद फरमा के गए हैं दुनिया से, जब उनको उठाया जाने लगा था उससे पहले उन्होंने ये बात अपने उम्मतियों को बता दी थी, मगर जब उन्होंने सारे के सारे दीन का ही हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जो चीज ईसा अलैहि सलाम लाए थे उससे वो तो कहीं दूर ही रह गई, तो कुछ और ही बना के रख दिया, तो ये बात को कहाँ उन्होंने समझना था, उसको क्या वैल्यू देनी थी। लेकिन वो अच्छी तरह पहचानते थे, कुरान कहता है कि ये अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और आप देख लें यहाँ पे कितनी वाजे बात है कि नाम तक वो बता के गए थे। तो जब ईसा अलैहि सलाम दोबारा आएंगे तो फिर आप क्या करना होगा, क्या अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के उनको आप पैगंबर मान लें? नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जब ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे ना, और ये याद रखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तवातुर के साथ अहादीस मौजूद है। तवातुर का मतलब समझते हैं? हदीस में तवातुर ये होता है कि यानी इतनी अहादीस हैं, इतनी अहादीस हैं, और इतने सारे सहाबा से अहादीस मौजूद हैं, नरेशंस उन्होंने नरेट किया इतने सारे सहाबा ने, कि उनका सब का झूठ के ऊपर जमा हो जाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। और कुरान भी हदीस से तवातुर है, इतने सारे जाहिर हम तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, कहीं कंप्यूटर में तो नहीं था, सेफ था, सहाबा की जुबानों से ही पहुंचा था ना, ये कुरान भी तवातुर हदीस से हम तक पहुंचा। इसी तरह तवातुर के साथ हदीस है जो कि ईसा अलैहि सलाम के आने के ऊपर दलालत है, जिनमें जिनमें उनके आने की खबर है कि वो दोबारा आएंगे। और अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो पहले ये कहे कि मैं सारी वो अहादीस, चाहे वो बुखारी में है, वो मुस्लिम में भी मौजूद है, वो और भी अहादीस की कुतुब में मौजूद है, उन सब का इनकार करता हूँ, तो फिर कुछ अपना दावा ला सकता है। इसके इससे पहले उसको ये कहने से पहले कि उन्होंने नहीं आना, पहले वो सारों का इनकार करें, तो तब बात बन सकती है। तो इतना फिर हौसला है किसी के अंदर कि वो सब उन हादीस का इनकार कर ले। तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो एज नए नबी नहीं तशरीफ लाएंगे, उनकी नबुवत तो उस वक्त की थी ना जिस वक्त वो आए थे। अब जब वो दोबारा आएंगे तो हमें हदीस में से पता चलता है कि जब वो उतरेंगे दमिश्क में, उसकी जामे मस्जिद में, तो उस वक्त नमाज का वक्त होगा। इतनी यानी डिटेल है इसमें, आप अब इनकार करने वालों ने तो सारी चीज का ही पानी फेर के रख दिया कि हर चीज को इन बिल्कुल यानी कि हम मानते ही नहीं, मतलब कैसी ये बात है, या तो कोई एक वेग सी बात हो तो फिर आप कहें। इतनी हद तक डिटेल है कि दमिश्क की जामे मस्जिद में वहां पे उतरेंगे और उस वक्त नमाज का वक्त होगा, इमामत का मसला होगा, कौन इमामत कराए, तो ईसा अलैहि सलाम उस वक्त इमाम मेहदी से फरमाएंगे कि वही इमामत कराएं, मैं एज उम्मती पीछे खड़ा हूंगा। तो वो एज नबी नहीं उस वक्त आएंगे कि मैं अब एक नया नबी आ गया हूं तो अब मुझे मेरी मानो, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद याद रखें, कोई अगर कहता है कि मैं नबी हूं अब मेरी मानो, अब मैं नया नबी आ गया हूं, वो झूठा है, वो कज़ाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद भी ऐसे आएंगे लोग, ऐसे झूठे दावेदार नबुवत के आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे तो वो नबुवत के दावे करेंगे, तो ऐसे में उनका इनकार जरूरी है। और इसके अंदर मैं बिल्कुल इसके अंदर कोई नहीं झिझक महसूस करती है कहने में, और अगर किसी को बुरा लगे तो लगता रहे कि मिर्ज़ा कादियानी एक झूठा था, कज़ाब था, उसने नबुवत का दावा किया, और जो उसके ऊपर ईमान लाया उसने कुफर किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि मैं ही मसीह हूं, मैं ही ईसा हूं और मैं आया हूं दुनिया के अंदर, तो ईसा अलैहि सलाम उम्मत ही बन के आएंगे, और उनके साथ तो बहुत सारी और चीजें हैं, वो तो मर भी चुका है, और वो जो सारी अहादीस हैं कि ईसा अलैहि सलाम क्या करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, या जूज माजूज उनके जमाने में, सारी बातें, और ईसा अलैहि सलाम पैदा थोड़ी होंगे किसी के घर में, उसको तो पता है कि ये किस घर में पैदा हुआ, और फिर इसने अपने आप के ऊपर ये कहा कि मैं ऊपर फरिश्ता उतरता है और मेरे ऐसे मेरे पास वही लेकर आता है। ये सब झूठ है, और ये फितना भी आजकल बहुत सारा उठा रहा है। हमें ये इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को इस बात का जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों वगैरह में ये लोग बड़े एक्टिव हैं। और इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कभी इनके बारे में मेंशन ही ना करें, और जी कोई नाराज ना हो जाए, ये ना हो कि कोई इनमें से कोई सुन ले और हमारे खिलाफ हो जाए। ये जान अल्लाह की दी हुई, और कोई खिलाफ हो तो होता रहे, मगर अल्लाह को हमने मुंह दिखाना है। कभी इसमें डरना नहीं चाहिए कि जो बातिल है उसको मुंह से बोलो कि ये बातिल है। जब तक आप ताहूत का इनकार नहीं करते, उस वक्त तक मैंने आपको बताया, उस वक्त तक तौहीद ही आपकी मुकम्मल नहीं होती। ये ताहूती कुव्वतें हैं, और इसके बारे में इसलिए ज्यादा जरूरी है हमारा जानना कि अगर ये कोई और होते तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मुंह से बोल के कहते हैं हम मुसलमान हैं, और यंग बच्चे बेचारे उनको तो पता नहीं है, तो ये यहाँ के बच्चे उनको तो बिल्कुल नहीं पता कादियानियत क्या है, क्या इनकी बैकग्राउंड, वो तो उनको मुसलमान ही समझ के उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो याद रखिए कि वो झूठा था, कज़्ज़ाब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, ठीक है। अच्छा, अब देखें आप और एक अहम बात कि सब नबियों ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया कि आपने आने वाले को मानना है और आपने उनके साथ उनकी मदद करनी है। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि 1,24,000 अंबिया आए हैं, तो आप सोचें कि उन सब में कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने पिछले नबी की तरदीद की हो, जिसने कहा कि नहीं जी वो तो गलत कहते थे, उनकी बातें ना सुनो, वो तो ऐसे ही थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे आज बहुत से उलमा, जो उलमाए हक भी हैं, मैं उलमाए सू की नहीं बात कर रही, उलमाए हक भी हैं, लेकिन इतना दुख होता है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो जी वो तो ऐसे, वो तो फलाना ऐसे, क्योंकि अगर उसको नहीं बुरा कहेंगे तो फिर हमारी काव क्या चलेगी। लेकिन इसी तरह और भी, सिर्फ उलमा की नहीं बात करते, आप दूसरे भी लोग देख लें, आप फिलोसफी में देख लें, आप साइंसेस में देख लें, हर जो नया आता है ना वो पिछले वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, पिछले वाले को कहता है उसकी थ्योरी ना मानो, उसकी थ्योरी तो ऐसे ही थी, मैं नई थ्योरी लेकर आया हूं। और उसकी बात में अट्रैक्शन ही इसलिए होती है कि लोग कहते हैं नई बात लेकर आया, देखो असल तो इसको पता है, देखो जी एक नई थ्योरी निकली है, सारे लोग उसकी तरफ भागते हैं। फिर हमेशा आप हिस्ट्री उठा के देखें, यही ट्रेल रहा है कि हर कोई नई बात लेकर आया और उसने फिर अपने आप को उस तरह से मनवाया कि देखो जी मैं नई बात कर रहा हूं, उसको क्या पता था, वो तो पिछला था। लेकिन नबियों का सुबहान अल्लाह, ये उनकी सच्चाई की कितनी बड़ी कंफर्मेशन है कि जिस जमाने में भी आए उन्होंने अपने पिछले नबी, चाहे उनके जमाने में कोई नबी था या उनसे पहले गुजर के, ईसा अलैहि सलाम ने आके ये नहीं कहा कि मूसा अलैहि सलाम को तो नऊज़ु बिल्ला उनको क्या पता था, असल तो मैं लेकर आया हूँ, नहीं उनकी तस्दीक करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की तस्दीक की, और हमें भी फरमाया क्या आगे आप पढ़ेंगे, हम सारों की तस्दीक करते, हमें भी यही हुक्म दिया गया, हमें वो यही सिखा के गए। इसी तरह हर नबी ने अपनी उम्मत को भी यही सिखाया कि मैं भी उनके ऊपर ईमान लाता हूं, तुम भी उनके ऊपर ईमान लाओ। तो आप सोचें इससे क्या साबित होता है, सोचने की बात है ना। एक तो इससे ये साबित होता है कि सारे अंबिया एक ही लड़ी के मोती हैं, एक एक सोर्स है सबका, मकसद एक, काम एक, कोई उनके पैगाम में फर्क नहीं रहा, सबका पैगाम तौहीद था। हाँ शरीयतें मुख्तलिफ थी, मसलन रोजे किस तरह से रखने हैं, नमाज किस तरह से पढ़नी है, उनकी डिफरेंट हो गई, ये खाना ये नहीं खाना, उसके कुछ डिफरेंट कवानीन हो गए, मगर जो बेसिक चीज थी ना तौहीद, वो सेम थी सबकी। और इससे पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से ही सारे भेजे गए थे, वरना तो एक क्या था, वरना तस्दीक कर ही नहीं सकते थे ना, वरना तो एक ने कहना था कि नहीं वो तो जो कहते थे वो कुछ और था, मैं कुछ और कह रहा हूं, ना नहीं सब ने ये सेम बात की। दूसरी एक बहुत बड़ी बात इससे समझ आती है कि रब्बानी कैसे होते हैं। अल्लाह के दीन के काम करने वाले कैसे होते हैं? अंबिया जो सबसे अव्वलीन इखलास वाले, इखलास में अव्वल और अल्लाह के दीन के काम में सबसे आगे, वो कैसे काम करते थे? हम उनसे सीखें कि वो अपने नाम, अपनी शोहरत, अपनी चौधराहट के लिए नहीं करते थे क्या? कि भाई वो आज देखो फिर, अगर मुझे कौन कुछ समझेगा अगर मैं कह दूं कि वो भी सच्चा था? वो ये नहीं कहते थे, वो उनकी तस्दीक करते थे, उनके साथ मिलके काम करते थे, उनकी मदद करते थे। हारून अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम की मदद की कि नहीं की? मूसा अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि आए अगर वो भी नबी बन गया तो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी, और वे दुआ मांग के उनकी नबुवत मांग रहे हैं। याह्या अलैहि सलाम ये नहीं कह रहे कि ईसा अलैहि सलाम आ गए तो फिर मेरा क्या बनेगा? उनको कोई कुछ नहीं था। इब्राहिम अलैहि सलाम ये नहीं कह रहे कि लो मेरा भतीजा अब ये भी नबी हो गया। एक ही वक्त में थे दोनों ने, हिजरत साथ की थी, इब्राहिम अलैहि सलाम लूत अलैहि सलाम साथ सारा थी जब हिजरत की थी, करीब करीब के इलाकों में उनको नबी बना के भेजा गया। तो चचा भतीजे से कोई जेलस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान नहीं बनाई हुई थी कि ये मेरी दुकान है और मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग गुण गाएं, लोग मेरे फॉलोअर बने, मेरे फैन बने, ये क्या बात हुई कि वो भी बन जाएगा तो फिर? नहीं, इसलिए कि वो सब रब्बानी थे ना। आज इसी में तो कमी है, हम रब्बानी नहीं बनाना चाहते लोगों को, हम ये चाहते बस मेरे बन जाए, मेरी क्लास में आए और कहीं ना जाके कहीं सुने कुछ, ये ना हो कि उनके स्टूडेंट बन जाए, मेरे फॉलोअर रहे, मेरे ही गुण गाए, मेरी तारीफें होती रहे। अंबिया के तरीके से देखें, उनका उसवा तो ये नहीं था। देखें दुनियावी कामों में आप खुद सोचिए, इन इखलास के लेवल देखें अंबिया का, हमारे पास तो कोई चीजें ही नहीं है जो कि हम फिर भी कितने जेलस हो जाते हैं कि एक इलाके में, यानी अगर मेरे साथ खुद ना ये एक्सपीरियंस हुआ होता तो शायद मैं नहीं इसको समझती कि आप किसी इलाके में जाते हो और वहां पे जो पहले से काम करने वाले थे वो इतने जेलस हो जाते हैं कि वो आपके खिलाफ बातें शुरू कर देते, सिर्फ इसलिए कि आप ये आ गए हैं तो ये ना हो कि हमारी दुकान की गाहक कम हो जाए और इनकी तरफ ना चले जाए। दुकान नहीं है ना बनाई हुई, जब दीन कारोबार बन जाए तो फिर ये होता है। मैंने कहा मेरा तो काम ही ऑनलाइन का है, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, मैं तो कहीं जाके कुछ नहीं कर रही, लेकिन देखो कि कितनी हसद। और ऐसे नहीं कि कोई नाहक लोग थे, हक पे हैं, लेकिन फिर भी तो ये कितनी बुरी चीज है जो हमारे अंदर आ गई भी है। ये वही है जो दुनियावी लोगों के अंदर होती है, जो दुनिया वाले भी होते हैं, जो दुनियावी काम करने वाले होते हैं उनके अंदर यही होती है ना, एक हसद, रकाबत। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसका भतीजा, ये तो इसको कहते हैं शरीका, मेरा शरीका मेरे बराबर आ जाए, उनको भी वो मिल जाए। कितनी इसके ऊपर लड़ाइयां होती हैं, कितने अपने शरीके को तो बिल्कुल नहीं चाहते इसको कुछ मिले, किसी और को दे देंगे, शरीके को नहीं देंगे। और कहां इब्राहिम अलैहि सलाम और भतीजा लूत अलैहि सलाम, देख ले खुद। गांव का चौधरी होगा तो उसका भाई अगर खड़ा हो जाए ना और चौधरी बनने की कोशिश करे तो वो अपने सके भाई को भी गवारा नहीं करता, भतीजा तो दूर की बात है। इस तरह आप देखें कई बादशाह आपने सुना होगा, उनके बेटों ने बाप को मरवा दिया, ये देखो इसके होते हुए मैं तो बादशाह बन नहीं सकता, ये तो मुझे गवारा नहीं करेगा कि मैं बादशाह बन जाऊं, ये तो हटेगा ही नहीं, तो मैं इसको मार ही देता हूं, रास्ते से ही हटा देता हूं। अगर दीन वाले भी इसी तरह करने लगे तो वो अंबिया के मिशन पे तो कम अज कम नहीं, हाँ इनके जैसे जरूर हो सकते हैं कि इसको रास्ते से हटाओ, इसके बारे में लोगों के दिलों के अंदर बुरी बातें डालो ताकि लोग इससे हटें और मेरे पास आए। ठीक, अंबिया की ये तरीके नहीं थे क्योंकि वो अपनी जात को आगे नहीं रखते थे ना, अल्लाह की जात को आगे रखते थे। उनको अपनी नहीं थी कि मेरी मेरी कोई पहचान और मेरी कोई ज्यादा मकबूलियत और मेरे लोगों के दिलों के अंदर ज्यादा वो हो। आज क्या क्या बहाना करते हैं, कहते नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि हमारे सदका जारिया ज्यादा हो इसलिए हम चाहते हैं बस हमारे पास आए। नहीं, ये बात नहीं है, ये शैतान ने उल्टी पट्टी फड़ाई भी, असल बात वो हसद है अंदर, ये क्यों शुरू हो गया, यही काम ये करेंगे। तो सुभान अल्लाह, इस चीज के अंदर बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नबियों ने ऐसा नहीं किया। नबियों ने जब अल्लाह की तरफ बुलाने वाला ही कोई और भी आया तो ना सिर्फ उसके ऊपर ईमान लाए, उसके साथ लग गए। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उनको नहीं था प्रॉब्लम कि मैं तो पहले से हूं। और ये, और आप सूरह यासीन में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पढ़ेंगे, वहां पे एक ही वक्त में दो तीन रसूल है और सारे एक दूसरे के मददगार, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए, बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि दीन के काम करने वालों को कैसा होना चाहिए। इसी तरह हमें ये पता चलता है कि जो ये वादा था, ठीक है, अंबिया से लिया गया, लेकिन असल में उनको भी यही मैसेज था कि वो अपनी उम्मतों से भी यही कर, कि उनकी उम्मतें भी, हर दौर के लोग जो भी आए, तो उनसे नबी भी ये अपनी उम्मत से कहकर जाएं कि तुम हमारे बाद भी नबी उम्मी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उनका इनकार नहीं करना, उनकी तस्दीक करनी है। यानी वो उनको बता के गए थे, और सिर्फ उनके ऊपर ईमान नहीं लाना, उनकी मदद करनी है। किस चीज में मदद करनी है? अंबिया कोई अपने घरों के कामों को कराने के लिए तो नहीं मदद कराते थे कि वो चाहते थे कि हमारे घरों के आगे काम करें, हमारे पैर दबाया करें, हमारे मुरीद बन के बैठे रहें, ये मदद थे। आजकल बास तो ऐसे ही करते हैं ना, नहीं हमारे घरों के ये शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को किस काम पे लगा देते हैं, कहते हैं हमारे घर के सौदे सलफ लेकर आओ, पैर दबाते रहो और घर के काम करो, बस ये ठीक है। नबियों ने तो ये नहीं कराया, उन्होंने क्या कहा कि हमारे मिशन में हमारी मदद करो। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ईसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था कि कौन है मेरा अल्लाह के रास्ते में मददगार, कौन है अंसारुल्लाह, तो قال الحواريون نحن انصار الله, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो नबी अपने मिशन में उनको साथ जैसे लेकर चलते थे अपने उम्मतियों को, अब वो ये कह के जाएं कि अगला जो नबी आएगा फिर तुमने उसके मिशन में भी उसका साथ देना है। और मिशन में साथ देने का मतलब क्या है? उसके मिशन को आगे लेके चलना है। अब देखें, अगर पिछली उम्मतों से ये अहद लिया गया कि आखिरी रसूल की तुमने मदद करनी है, तो आप मुझे बताएं कि अगर उनके नबियों ने उनको ये बात बताई, तो हम तो बतौरे उला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्स्ट ईमान लाने वाले हैं, हम तो उनके उम्मती हैं। हर नबी अपनी उम्मत को अगर ये बात कह के गया हुआ है, तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट उम्मती हैं। हमें फिर जो हम कहते हैं कि हम आप पर ईमान लेकर आए, हमारे लिए भी फिर क्या रिक्वायर्ड है कि सिर्फ ईमान लाना ये बात नहीं है, आगे आपकी मदद करना भी हमारी पर जरूरी है, लाजिम है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद, आपकी जिंदगी में आपकी मदद करना एक अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग जाते, अगर हम भी उस वक्त होते तो उनकी इस तरह से मदद करते कि भाई उनके मिशन में साथ लगते, वो जहां जहां जाते, जो खतूत देकर भेजते, उन आपका पैगाम ले लेके दुनिया में घूमते, जैसे सहाबा ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहे, वो पीछे नहीं हटे किसी जगह पर भी, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से मदद की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा करम पूरी दुनिया में फैल गए थे सारे। इसीलिए आप देखते हैं ना, सहाबा की बहुत सारी, सहाबा की कोई कब्रें मदीना में तो नहीं है, सब दुनिया में फैल गए थे। किसी की कब्र जॉर्डन में है, किसी की कब्र कहीं और टर्की में है, किसी की कहीं है, किसी अफ्रीका के कोई मुल्कों में है। तो क्यों, वहां पे कैसे पहुंचे और क्या करने के लिए पहुंचे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन में मदद करने के लिए। ये मदद अब खत्म नहीं हुई इसलिए कि आपकी नबुवत चल रही है ना, ये भी जमाना क्या है, आपकी नबुवत का ही है। तो आपकी मदद अब कैसे होगी? आप जिस मिशन पे काम करते रहे उसी को आगे बढ़ाना, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद। क्योंकि आपके बाद अब कोई नबी आना नहीं, कि किसी और नबी को कोई आता तो फिर उसके साथ लग जाते हम, लेकिन अब तो नबुवत खत्म हो गई, तो अब आपके ही मिशन को आगे पहुंचाना है, इसीलिए आपकी लाई हुई किताब और शरीयत मौजूद रहेगी और मौजूद है। आज देखें एक एक लफ्ज उसी तरह महफूज है, क्योंकि अब कोई और नबी नहीं आना और ये एक्सपायर नहीं होनी, ये ऐसे ही रहेगी। तो अब क्या काम है आपके उम्मतियों का कि वो भी आपके ऊपर ईमान लाएं और आपके साथ लग जाएं, आपकी मदद करें। और ये मदद ऐसे नहीं होगी कि हम नाते पढ़ते रहें, जलसे जुलूस निकालते रहें, झंडे लेके खड़े हो जाएं, 12 रबीउल अव्वल पे झूम झूम के हम मिलादें करें, तो ये कोई मदद नहीं है। मदद सीखनी है ना कि मदद होती कैसे है, तो सहाबा से जरा सीखिए, आपको पता चलेगा मदद कैसे होती है, करना क्या है मुझे। हमने तो बस इसको ही बस बना लिया कि आंसू बहा लिए, उनके नाम आया तो आंसू बहा लिया। मैं बड़ी मोहब्बत है उनसे, बड़ी मोहब्बत है। क्या अब वो जिसके लिए उन्होंने सारी अपनी जिंदगी लगा दी, मैं तो सोचूं कि देखें, यानी अल्लाह अकबर, सोच के भी हंसते कि अल्लाह कैसे लोग थे, ना अपना घर बार देखा, ना अपनी फैमिलीज, ना कोई काम कारोबार, बस तन मन धन दिन और रात नहीं देखे उन्होंने, कोई वक्त नहीं देखा उन्होंने, बस अपने आप को कुर्बान करके रख दिया इस दीन के लिए। आज हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हम तो 4 लोगों में बैठ जाए ना तो हमें शर्म आती है ये बताते हुए कि अच्छा मैं कुरान सीख रही हूँ या आप भी सीखने के लिए आए। आए कैसे कहूँ मैं, ये सोचेंगे कि पता नहीं ये बहुत ही ज्यादा फनेटिक हो गई है, कैसे कहूँ मैं, कैसे इनको बुलाऊं। हम तो अपने मुसलमानों में नहीं कह पाते, हमने क्या मदद करनी है दीन की उनकी। आप खुद सोचें कि इतनी मुखालफतें सही, मक्का में कैसी लाइफ थी उनकी, और थ्रू आउट स्ट्रेसफुल लाइफ। हमें 4 दिन कोई टेंशन हो जाए ना तो हम अगले दिन नमाज में भी वो नहीं लग रहा होता ध्यान, और सारे काम भी छोड़ के बैठ जाते हैं, मुझे टेंशन बहुत है, आए मुझे तो बड़ी डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, मैं तो क्लास ही नहीं ले सकती। क्या उनके ऊपर कम स्ट्रेसफुल हालात थे? उनकी एंग्जाइटी देखिए, उनके सामने देखेंगे क्या क्या हो रहा था, कोई लोग हार नहीं पहना रहे थे, वो अपने सहाबा को देख रहे हैं कैसे टॉर्चर हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे इनको शहीद किया जा रहा है, वो देख रहे हैं हर तरफ से मुखालफत है, वो देख रहे हैं कि सुबह और शाम कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेस की बात आ रही है, फिर भी लगे हुए लगे हुए लगे। औलाद तक को तलाके मिल गई, कितनी बड़ी एक बाप के लिए सदमे की बात है। अपने जो अपने अजीज हैं, देखिए गैर जो कोई बात करे ना तो फिर भी इंसान सह लेता है, जो अपना चचा अबू लहब कैसे पीछे पड़ गया था, वो ही लोग जो तारीफें किया करते थे, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाया करते थे, सादिक और अमीन कहा करते थे, वो अब कैसे मुखालिफ हो गए। ये कोई कम बात है? हमारे से तो कोई एक जो हमें पहले पसंद करता था वो अब हमारे से जरा मुंह मोड़ के बैठ जाए तो हमें इसके ऊपर ही गश आने लगते, आए देखो ना पहले मुझे बुलाते होते थे, अब देखो जब से मैं इस तरफ आई हूं ना अब उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। हमें तो यही टेंशन कितनी मार देती है, ये हमारे लिए कितना बड़ा गम हो जाता है, अब वो बुलाते नहीं है। वो छोड़ो उनको बुलाने को, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी जिंदगी हलकान कर दी कि ये दीन हम तक पहुंचे। उनकी कुर्बानियां ना होती ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके बाद आपके सहाबा की, वो घूमे दुनिया के अंदर तो तभी जाके हम तक भी दीन पहुंचा है आज। तो आज की कोशिशों से तो कुछ नहीं होना था, आज तो देख लें कि क्या कोशिशें हो रही हैं आपके सामने ही है, अरब कितनी कोशिशें कर रहे हैं या दूसरे भी कितनी कोशिशें कर रहे हैं, तो आज भी अगर आप छोड़ते तो पहुंच जाता आप तक दीन इस्लाम, ये तो उन्हीं की कोशिशों से आज तक पहुंचा हुआ और उसी के बलबूते पे हम चल रहे हैं, ये उनकी कोशिशों का समर खा रहे हैं हम सब। तो उन्होंने ये, हाँ अच्छा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखे, वहां से मदीना माइग्रेट किया, चलो अभी कोई सुख चैन आ जाता, कोई अभी कोई मसले हल हो जाते, तब भी नहीं मसले हल, कहीं मुनाफिकीन को अपने सर उठा लिए, कहीं यहूदी को साजिशें कर रहे हैं, कहीं मुशरिकीन ने मक्का जान नहीं छोड़ा है, कभी वो हमले करने के लिए पहुंच रहे हैं, हर वक्त खतरा हर वक्त खतरा हर वक्त, ऐसा लगता था अभी आए कि अभी आए, ऑल द टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जासूस भेजने पड़ते थे कि पता रखो कि भैया इर्द गिर्द हो क्या रहा है, अचानक हमला ही ना हो जाए। तो ऐसे नहीं था कि वहां पे जाके बड़ी एक आराम की जिंदगी शुरू हो गई थी, आप सोचें कि उनको थ्रू आउट किन हालात से गुजरना पड़ा। आसान नहीं होता ये मिशन, आसान नहीं है, तो टफ बनना पड़ता है इसके लिए, थिक स्किन करनी पड़ती है, और जो छोटी छोटी बातों के ऊपर ही गम लेके बैठ जाए, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाए, वो ऐसे नहीं, उसने मुझे ऐसे देख लिया, उसने मुझे ये कह दिया, उन्होंने तो मेरा हिजाब देख के मेरा मजाक कर दिया, उसी के ऊपर हम डिप्रेस बैठे हुए कई दिन हो गए हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, फलाना करूँ, वो क्या काम करेंगे बताएं, क्या काम करेंगे, मदद क्या हमने करनी है, हम तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, अपने दीन के मामले में एहसास कमतरी है। और एहसास कमतरी उनको होना चाहिए जो दीन पे नहीं चलने वाले, उनको नहीं है, वो धड़ल्ले से फिर रहे हैं और फखर से फिर रहे हैं, और जो दीन वाले हैं ना वो अपने हिजाब पे शर्मा रहे हैं, वो अपने पढ़ने पे शर्मा रहे हैं, वो अपनी नमाजों पे शर्मा रहे हैं। ये लोग क्या कहेंगे, शादी वाला दिन है और फिर उसको नमाज की पढ़ी भी, तो लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसे बनी संवरी नहीं है जैसे बाकी, ये शर्मा शर्मा के फिर रहे हैं, इसलिए अपनी बार बार कहानियां बता रहे हैं। देखो मैं पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो मैं भी आपकी तरह बहुत मॉडर्न होती थी, ये तो अभी बस आने शुरू किया। ये क्या बताता है, एहसास कमतरी, अंदर से शर्माई हुई है, अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर ये चीज नहीं है कि मैं ठीक हूं, मैं हक पे हूं, ये गलत कर रहे हैं। क्या इन्होंने मदद करनी है अल्लाह के दीन की, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लेकर आए कि जिस चीज पे आप खड़े हैं ये हक है, और ये जो सब है ये बातिल है, और अगर यही बात नहीं है और आंसू बहाते रहेंगे, वो कितने अच्छे रह गए और हम क्या हो गए, और बस हम बैकवर्ड रह गए, और वो देखो वो मॉडर्न है और फलां है, तो फिर क्या आप दीन की मदद करेंगे। तो सहाबा कराम फिर देखें किस तरह उन्होंने भी अपनी जिंदगियां लगाई, परवाह नहीं की, अपने घर बार छोड़े, जाहिर है उनके काम कारोबार सब चीजें छोड़ी ही होंगी तो निकले ना अपने घरों से, किस चीज की परवाह नहीं की, और दीन की मदद की। आज दीन के मददगार नहीं है मौजूद, कोई बहुत जोश में आके इस तरफ आ भी जाए ना तो 4 दिन जोश रहता है, उसके बाद फिर कोई परवाह नहीं, जो काम है वो उधर पड़ा हुआ है, और बहुत से हमारे पास काम है, बहुत प्रायोरिटीज है, ये क्या अब हम इस, या फिर उस इखलास से काम नहीं करते, जैसे अगर पैसे मिल रहे हो ना तो फिर कितने खलूस से करेंगे, बेस्ट करके काम देंगे, इसको बेस्ट नहीं करते, इसको तो हमारे बांधे का जैसा भी हो जाए सर से उतारो, हमें कौन से कोई पैसे मिलते हैं, इसकी कोई तनख्वाह लेते हैं हम, इसीलिए परवाह ही नहीं होती, जैसा तैसा काम कर रहे हैं, किसी ने पूछ लिया तो जाग गए, नहीं पूछा तो जो हो रहा है होता रहे, जो जिम्मेदारी ली हुई है उसकी कोई परवाह नहीं, तो ये हमारे हाल है। जहां पे भी आप हैं आप सोचें मैं कैसे दीन की मदद कर सकती हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मैं कैसे हक अदा कर सकती हूँ, मैं क्या बस बोल के जुबानी, या वो चीज जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी लगा दी, वो काम मुझे इतना महबूब होना चाहिए, मेरे नबी के खून बहे हैं इस मिशन के पीछे, ताइफ के पत्थर खाए उन्होंने इस मिशन के पीछे, तो ये काम तो मैंने करना है जरूर, मैं लेके चलूंगी आगे, क्योंकि जिसको नबी की जात महबूब हो फिर वो ये नहीं पूछता अच्छा अभी ये क्या, अब हमारा काम है, अभी ये हमारे पर फर्ज है, देखो तो उन्होंने क्या किया, अब फिर सोचो तुम उनकी उम्मत ही हो, तुम तो इस दीन से शर्माते हो, तुम फिर कैसे ये काम करोगे। तो ये हमें बातें सिखाती हैं, एक तो ये बात कि ये इसमें कोई वो नहीं है कि जो ये लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना जरूरी है, तो ये देख लो जनाब ये आयत देख लो कि सारे नबियों से एहद लिया गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएंगे, और दूसरा मतलब ये भी कि हर वो नबी जो उनके बाद आएगा, और हजरत ईसा ने तो खुद फरमा दिया था, और सब सिंसियर थे, सब में इखलास था, किसी ने दूसरे को कट नहीं किया, सब अल्लाह ही की तरफ से भेजे गए थे, सब ने अल्लाह ताला से वादा किया और उसका इकरार किया, और अल्लाह ताला इसके ऊपर गवाह है उनके साथ कि उसने ये वादा इनसे लिया है। तो ये कानून नबियों के लिए भी है और उम्मतियों के लिए भी कानून बताया जा रहा है, ठीक है, तो ऐ यहूदो नसारा तुम भी सुन लो, तुम्हारे नबी ने भी ये अहद किया था और वो ही तुम्हें बता के भी गए थे, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो इसके बाद मुंह मोड़ता है, जैसे अब यहूदो नसारा ने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने ही बात सुनी, तो ये हुक्म उम्मतियों के लिए भी सेम है, तो वो फासिक है। अब अगर हम कहें कि इन नबियों की बात हो रही है तो क्या उनके बारे में कहा जा रहा है? तो अगर हम उस सिनेरियो में भी लें तो इसलिए कि जब बात बड़े की कर दी जाती है ना, जो लाडले को अगर कोई बात कह दी जाए कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें भी सजा मिलेगी, तो वो जो बाकी जो होते हैं वो भी डर जाते हैं, या जो लायक बच्चा होता है उसको जब कह दिया जाए कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, तो बाकी लोग तो वैसे ही डर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे बता दिया गया कि नबी भी अगर मुंह मोड़ जाएंगे इस अहद से तो वो भी फासिक है। तो उम्मतियों तुम्हारा फिर क्या हाल होगा? और कॉमन सेंस के अंदर आप देखें कि जब नबियों से वादा है तो उम्मतियों से भी है, तो जो कोई भी मुंह मोड़ जाएगा इससे वो फासिक है। फिर फासिक वो है जो हदों से निकला हुआ, हद से निकले हुए थे, ये अल्लाह की इताअत से निकल गए। अब इंपॉर्टेंट आयत, अफा गैरा दीन इल्लाह ही अबकून, क्वेश्चन है आपसे, क्या अल्लाह के दीन के अलावा, अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हो? उसकी तलाश में है वो, यबगी होता है चाहना, यानी आपको कोई और दीन पसंद है। बेस्ट अल्लाह ने दीन तुम्हारी तरफ भेजा, लेकिन अब क्या तुम्हें कोई और अधियान पसंद हो गए? दीन क्या होता है? वे ऑफ लाइफ, तरीका है जिंदगी। अल्लाह ताला ने तो चूज किया कौन सा है तरीका जिंदगी, पहले आया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या चूज किया? इस्लाम को तुम्हारे लिए चूज कर दिया तरीका जिंदगी, इस्लाम को तुम्हारे लिए बना दिया वे ऑफ लाइफ। लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक वो हो रही है, और क्या तुम्हें औरों के तरीके पसंद आ रहे हैं? उसका भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है। अल्लाह के बताया हुआ तरीका छोड़ के तुम्हें और अच्छे लग रहे हैं? जबकि वलहु अस्सलामा मन फिस समावाती वल अर्द, अल्लाह ने तुम्हें ये दीन दिया, अल्लाह ने तुम्हें ये तरीका जिंदगी दिया, और उसके आगे उसके चूज किए हुए दीन को छोड़ के तुम्हें कोई और चीजें अच्छी लग रही हैं, औरों के तरीके अच्छे लग रहे हैं, जबकि सारी कायनात आसमान और जमीन में जो भी है वो तो इस्लाम ले आया हुआ है, वो तो इस्लाम ले आया हुआ है, तौअन अव करहन, खुशी से या ना खुशी से वो मुती हो गया। फरमा इस्लामा किससे है? सीन लाम मीम से, इस्लाम भी इसी से है, यानी सबमिट कर देना, उन्होंने सबमिट कर दिया हुआ, एब्सोल्यूट सबमिशन, फरमा बरदार हो गए, ताबे फरमान हो गए, जो भी आसमानों जमीन में, तुम अपने लिए नए नए तरीके चाहते हो, तुम्हें अल्लाह का दिया हुआ तरीका नहीं पसंद है। हम अपने आप से पूछा करें, जब भी हमें लोगों के तरीके पसंद आते हैं ना कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीकों से अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट हैं, अल्लाह ताला ने कोई और तरीका हमें बताया, मसलन कारोबार का, काम का, इकोनॉमी का, रहन सहन का, खाने पीने का, लिबास का, जो भी ये सारे तरीके, तरीका जिंदगी सिर्फ ये मतलब नहीं, दीन का मतलब ये नहीं इबादत कि आपने नमाज कैसे पढ़नी है, ये नहीं है सिर्फ, ठीक है, तरीका जिंदगी हर चीज को कवर करता है, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी मुआशरत कैसी है, आपकी मईशत कैसी है, सब चीज, आपके कानून कैसे हैं, सब चीजें, आपको अल्लाह के कानून छोड़ के औरों के कानून पसंद आते हैं, वो उनमें बड़ी फेयरटी है। इस्लाम तो ये कह रहा है, इस्लाम तो कहता है चोर के हाथ काट दो, तो ये क्या बात हुई जी, तो आपको वो अच्छे लगते हैं जो चोरों को खुला छोड़ दे, या जो बस चोरों को छोटी सी सजा दे के उनको छोड़ दें, वो अच्छे लगते हैं, ये नाउज बिल्ला ये जालिमाना लगते हैं, ये क्या हुआ के बाद सजाए मौत, मौत की कातिल की सजा मौत है, ये तो नहीं होना चाहिए, सजाए मौत तो होनी ही नहीं चाहिए। तो जो अल्लाह ने तरीका बताया क़िसास का, वो नहीं आपको पसंद है तो, लेकिन आपको दूसरे पसंद है। इस तरह लिबास में आपको जो अल्लाह ताला ने बताया, कोई खास लिबास नहीं अल्लाह ने बताया कि शलवार कमीज पहनो, जुब्बे पहनो, अब एक तो हमारी ये भी एक बड़ी गलत फहमी ना, जिसने जुब्बा पहन लिया, जिस मर्द ने पहन लिया वो बहुत इस्लामी है, और जिसने नहीं पहना वो गैर इस्लामी है, जिसने पैंट शर्ट पहन ली वो गैर इस्लामी, नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई स्पेसिफिक लिबास नहीं बताया, सातर लिबास बताया औरतों के लिए, वो जो कवर करे सारा, जब ऐसे लिबास बता दिए, लेकिन वो नहीं अच्छे लगते, वो अच्छे लगते हैं जिसमें जरा थोड़ा सा कुछ सामने भी नजर आए, बाजू भी नजर आए, जो शलवार भी जरा ऊपर हो, एंकल्स भी नजर आए, तो वो अच्छे लगते हैं। तो क्यों अल्लाह का दिया हुआ तरीका पसंद नहीं है तुम्हें? और ये क्या हुआ, कहते हैं कि भाई इस तरह की सियासत होनी चाहिए, इस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, इस्लाम ने ये बताया, तो ये तो नहीं सही है, इस्लामिक मॉडल नहीं पसंद है मुझे, तो दूसरा पसंद है। क्यों? अफा गैर दीन अल्लाह, सबके लिए यही क्वेश्चन है, सबके लिए, जो भी दूसरे तरीकों को पसंद करते हैं, जो अगेंस्ट हैं दीने इस्लाम के बताए हुए तरीके के, चाहे वो किसी फेज ऑफ लाइफ में हो, इस्लाम ने एक तरीका बता दिया आपको कि इस तरह से भाई चलना है, आपको अगर दूसरा तरीका पसंद आ रहा है उसके जो ऑपोजिट है, तो ऐसे हर फर्द के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहता है उससे ये सवाल है कि आफा गैरा दीन अल्लाह यबगून, तुम्हें देखते नहीं, तुम अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो तुम अल्लाह की मखलूक से ही कोई इबरत ले लो, इससे ही कोई सबक ले लो, जमीन आसमान की तरफ देख लो, कैसे वो बिछे हुए अल्लाह के आगे, जैसे अल्लाह ताला ने उनको फरमाया वैसे उस हुक्म के पाबंद हैं, तो इनको नहीं देखते, उनसे ही सीख लो फरमा बरदारी, उनसे ही सीख लो सबमिशन, और तुम्हें और तरीके पसंद आते हैं, तुम सबमिट नहीं करना चाहते, तो हम देखें कि अल्लाह की पसंद के मुकाबले में कहां कहां मुझे हिंदुओं के तरीके पसंद है, कहां कहां अल्लाह की पसंद के आगे मुझे वेस्ट के तरीके पसंद है, कहां कहां अल्लाह की पसंद के आगे मुझे अपने कल्चर में जो रिवाज पाए हुए हैं, या अपने रस्मों रिवाज के जो जो हैं कल्चरल जो भी नॉर्म्स और सोसाइटी जो कहलाते हैं वो पसंद है, नोट करें इनको, खुद से पूछें कहां कहां मुझे अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुकाबले में अक्सरियत के तरीके पसंद है, सब ये कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो सब ये कर रहे हैं, तो आफा गैरा दीन अल्लाह ही अबगून, तुम अल्लाह के दीन के सिवा कुछ और चाहते हो? आसमान और जमीन को देखो, देखिए आसमान और जमीन के बारे में तो सूरह नूर में आपको बताया भी था कि अल्लाह ताला ने फरमाया जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती, क्या आपने नहीं देखा कि आसमान और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ते हुए परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, हर एक कुल्लुन कद आलिम सलातहू व तस्बीहा, सब अपनी सलात भी जानते हैं, नमाज भी जानते हैं, इंसानों को अभी तक शायद नमाज, इतने बड़े भी हो जाते हैं नमाज नहीं पढ़नी आती, नमाज का पता ही नहीं है, नमाज में सही नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज का पता ही नहीं है उसके कि क्या चीज नमाज को खराब करती है, नमाज का तर्जुमा नहीं पता, लेकिन वो उनको सबको पता है, अपनी नमाज भी पता है, अपनी तस्बीहात भी पता है, अब तक ये परिंदों तक को पता है, हम एक सुबहान अल्लाह कह के बड़ा एहसान समझते हैं जी, मैंने तो इतनी तस्बीह कर ली, मैंने तो इतना कुरान पढ़ लिया, वो सारी कायनात देखो तस्बीह कर रही है, अगर आपने नमाजें पढ़ ली तो कौन सा कारनामा कर दिया, आप ना ही भी पढ़ेंगे तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, हर चीज कर रही है अल्लाह की तस्बीह और उसके आगे झुकी हुई है, मन जो कोई भी है आसमानों में, आप ये देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आसमान चिरचिरा रहा है, और उसको हक क्या कि वो चिरचिरा है, यानी ऐसे होता है ना जैसे बहुत ज्यादा भारी भरकम कोई किसी चीज पे बैठ जाए तो चिर चिर की आवाज आने लगती है, चारपाई वगैरह हो या स्क्वीकिंग साउंड होती है, यहाँ पे तो जिस तरह से घर हैं फ्लोर्स हैं आप देखें चलते हैं तो स्क्वीकिंग साउंड आती है, तो आसमान चिरचिरा रहा है, और वो क्यों ना चिरचिराए कि उसके ऊपर चार उंगली भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे कोई फरिश्ता नमाज में सजदे में इसमें अल्लाह की इबादत में ना लगाओ, इतनी अल्लाह के मुती और फरमा बरदार है, और तुम समझते हो कि तुम्हारी इस बेवफाई से अल्लाह को फर्क पड़ेगा कि तुम भाग भाग के औरों के तरीके पसंद कर रहे हैं और अल्लाह के आगे सबमिट नहीं करते तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे सारे जो बिछे हुए हैं उसके आगे झुके हुए हैं उसके आगे, आसमान की देखो सारी मखलूक, जमीन की भी, तौअन अव करहन, तौअन अव करहन का मतलब क्या, खुशी से, तौ कहते हैं खुशी से इताअत करने को, और करहन या कराहत के साथ, ना नापसंदीदगी के साथ, जितनी इंसानों के अलावा मखलूक है ना वो तो सारी तौअन ही अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, सब ही अल्लाह के आगे झुके में खुशी के साथ, आप अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन से फरमाया था कि खुशी से आओ या ना खुशी से, तो तो वो कहने लगे हम खुशी से आते हैं यानी इताअत के लिए, अल्लाह ने इनसे पूछा था। तो इसे पता चलता है आसमानों जमीन तो खुशी से ही, उनके अंदर ना खुशी है ही नहीं है, तो ना खुशी फिर किस में होती है? काफिर है वो, अल्लाह को नहीं मानता कि ना खुशी है, मगर फिर भी उसको इताअत करनी पड़ती। कैसे? उसके जो बाल हैं वो अल्लाह के हुक्म से उगते ही जाते हैं, उसके नाखून है वो बढ़ते ही जाते हैं, उसका मेदा जो काम कर रहा है वो कर रहा है, उसका दिल, उसके दिमाग, उसके सब अल्लाह के हुक्म पे चल रहा है। तो उसको चाहे वो ना खुश है लेकिन सबमिट तो उसको भी करना ही पड़ रहा है, उसको भी इनके आगे झुका ही हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसको उसके जिस्म मान ही रहा है अल्लाह का, चाहे उसका दिल खुश नहीं है, मजबूरन मानना ही पड़ रहा है। उसकी मौत आती है वो कह नहीं सकता मैंने नहीं अल्लाह की माननी, अब इसके फरिश्ते आए मैं नहीं उनको मानता। और बाज़ मुसलमान भी ना खुशी से ही अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह माफ करे, ना खुशी से ही नमाजें पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सारी मखलूक हमें दर्स क्या दे रही है, क्या सबक दे रही है हमें, क्या हमें समझा रही है कि देखो हम सबमिट किए हुए, हम इताअत गुजार हैं, और इंसान तू कोई होश कर, तेरे पास तो अकल है, समझ है, तू तू अल्लाह के आगे ज्यादा तेरा हक था कि तू झुकता। हम देखे कैसे सबमिट किए हुए, सूरज है तो मुसलमान है, चांद है तो मुसलमान है, तारे हैं तो मुसलमान है। मुसलमान मतलब क्या? सबमिट किया हुआ सबने, सब अल्लाह की इताअत के मुताबिक चल रहे हैं, कोई इनकारी नहीं है, कोई बगावत नहीं है यहाँ पे, कोई किसी किस्म की नाफरमानी नहीं है, एक दिन की भी नाफरमानी नहीं। तो इंसान तू तो कोई अकल कर, तुझे अल्लाह ताला ने एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, तू सबमिट ही नहीं करता, तू इताअत ही नहीं करता, तू भाग भाग के दूसरों के तरीकों पे जाता है। नहीं, अल्लाह के तरीके से ज्यादा किसका अच्छा तरीका हो सकता है? कोई और इस काबिल है कि जो उससे बेहतर कोई चीज बताए? कोई और इस काबिल है? किसी के पास इतना इल्म, इतनी समझ, इतनी हिकमत? मानेंगे वैसे हम सारे, हाँ अल्लाह अल हकीम है, उसकी नाम अल हकीम अल अलीम की तस्बीहां करा लो हमसे जितनी मर्जी। उसके बाद अपनी जिंदगी में जो तुम्हें उसने वे ऑफ लाइफ दिया, तुम्हें ट्रस्ट है कि उससे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं दे सकता था? ट्रस्ट करते हो तुम? वहां पे कोई ट्रस्ट नहीं है, वहां पे औरों पे ट्रस्ट है कि वो ज्यादा अच्छा बताते हैं, उनके तरीके ज्यादा अच्छी हैं। देखें अब हम, हमारी कितनी दोगली जिंदगी है, बोलते कुछ हैं और जिंदगी में अमल क्या है? बोलने में हमसे जितने मर्जी कलाबे मिला लो, जमीन आसमान के मिला लेंगे, वो तो बस ऐसे, वो तो अल्लाह ताला की नाम की तस्बीहात करना, वजीफे करना, पता नहीं क्या क्या, जो मर्जी पढ़वा लो हमसे, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम नहीं चाहिए। इस्लाम से बाज लोग तो ये हाल है कि ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा है, हमें बड़ा पसंद है, दीन पसंद है, दीन दीनदार नहीं है, दीन को पसंद करते हैं, मगर दूर दूर से, आपके लिए अच्छा है, हमें आप भी अच्छे लगते हैं कि आप बड़े कवर्ड हैं, आप बड़ा अच्छे काम ये कर रहे हैं, आप बड़ी नमाजी हैं, आप बड़े परहेजगार हैं, वही हमें, लेकिन हमें ना कहो कि हम करें, हमसे ना एक्सपेक्ट करो, हम इसी तरह अच्छे हैं, हमने ऐसे बनना नहीं है जैसे आप हैं, वो हम अपने तरीकों पे ही चलेंगे। ये दीन पसंद है, दीनदार नहीं, हमारी अक्सरियत ऐसे ही है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां, सहाबा की जिंदगी बहुत पसंद करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वैसा बनना चाहोगे? ना ना ना, वो हम इसी तरह सही हैं। अल्लाह अकबर। तो हमें ये पता चलता है कि जो तरीका, जो जिंदगी गुजारने के हमें कवानीन, जो जाबते, जो रूल्स हमें अल्लाह ताला ने दे दिए, वो ही हैं जो बेस्ट हैं, उनके अलावा कोई चीज इससे बढ़ के नहीं है। और हम ये समझ जाएं कि सारी आसमानों जमीन सब उसके आगे फरमा बरदार है, और हमें भी फरमा बरदारी दिखानी है, क्योंकि वह इलैही युरजाऊन, उसी की तरफ लौटाए जाएंगे ये सब। तो जाना कहाँ है तुम? कर लो आज जिसके तरीके तुम्हें पसंद है, उसके बाद जाओगे कहाँ? नहीं सबमिट करते तो जाओगे कहाँ? बताओ, कोई जाए पनाह है तुम्हारे पास? आखिर को तो अल्लाह की तरफ ही लौटना है, फिर करोगे क्या? तो आज सबमिट कर दो ना, जैसे वो कहता है उस तरह से चल पड़ो। जो इंसान उलट चलता है ना, अल्लाह के दिए हुए तरीके से उलट चलता है। वो समझता है बाज दफा कि मैं अकेला हो गया। वो अकेला नहीं है, उसके साथ वो देखे तो उसके साथ तो सारी कायनात है, लेकिन सारी कायनात अल्लाह की फरमाबरदार है। अकेले तो वो लोग हैं जो अल्लाह के दिए हुए निजाम और दिए हुए दीन के खिलाफ हैं, वो हैं अकेले। वो अकेला नहीं है जो मुआहिद है, जो एक अल्लाह की मानने वाला, एक अल्लाह पे ईमान रखने वाला, वो कभी अकेला नहीं होता। क्यों चांद सितारे इतने अनगिनत सितारे फरिश्ते पत्थर शजर हजर सब उसके साथ है, सब अल्लाह के मुती हैं। तो जब लौटना उस रब की तरफ है, उसको मुंह दिखाना है, तो मत बागी बनो, उसके दीन के बागी ना बनो। वो तो बागी हैं, उन्होंने तो मगदूबे अलैहिम हैं, दालीन हैं। हम क्यों ऐसे बन बन के और खुद को सोचते हैं कि हम इनके जैसे हो जाएंगे तो हम अच्छे हैं, तब हम ठीक हैं, और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक होंगे तो तब नहीं ठीक है। इलैहि रुजाऊन, तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे।